नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् सिद्धमणन्तमणिन्दिय मणुव मम पत्थसौखमणवज्रम् केवलपहोहनिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः।
भूतबलि और पुष्पदंत रचित जो षटखंडागम है उस पर वीरसेन आचार्य ने लिखी हुई है धवला टीका चल रही है। इसमें हम पृष्ठ 39 पर आए हैं। पहले में पहले शास्त्र शुरू करने के पहले 6 बातें बताई जाती है, मंगल, निमित्त, हेतु, शास्त्र का प्रमाण, उसका नाम और कर्ता। और ये जो 6 बातें हैं, वो भी 6-6 अपेक्षाओं से उसका वर्णन आता है। उसका धातु बताया जाता है निक्षेप, नय, एकार्थ, अन्य जो शब्द एकार्थवाची, उस शब्द की निरुक्ति कैसी हुई, और अंत में अनुयोग बताए जाते हैं। अनुयोग में 6 बातें बताई जाती है कि पहले में पहले 6 प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आएगा तो उसको कहेंगे हम ये उसके अनुयोग है। पहला प्रश्न किम यानी पदार्थ क्या है, दूसरा प्रश्न पूछा था कस्य यानी किसके है, तीसरा प्रश्न क्या पूछा था केन किसके द्वारा, चौथा प्रश्न था क्व यानी कथ कहां पर यानी किसमें उत्पन्न होता है, केवचिरम ये 5वां पॉइंट है, केवचिरम या कियचिरम यानी कब तक वो रहता है, और 6ठा जो पॉइंट है कदी विदो कितने प्रकार का है, 40 पेज पर है, कितने प्रकार का है पदार्थ, कितने प्रकार का है, ये भी हमारा हुआ नहीं है, उसको हम देखेंगे। हम यहाँ तक आए ना, कहाँ तक है, केवचिरम की बात चल रही है, उसमें हमने वो अनादि अनंत देखा था द्रव्य की अपेक्षा, और अलग अलग जीवों की अपेक्षा अनादि शांत सादि अनंत, वो बात चल रही थी अपनी। हम पेज नंबर 39 पर आ गए हैं। कल ये बात आई थी कि जो ज्ञान का प्रकट अंश है वो केवल ज्ञान कहने पूर्ण ज्ञान का अंश है, ज्ञान गुण का ही वो अंश है, क्योंकि ज्ञान में परिपूर्ण सामर्थ्य पड़ी हुई है और उस सामर्थ्य में से कुछ अंश प्रकट है। तो यदि वो केवल ज्ञान अभी नहीं मानेंगे तो अभी जो प्रकट नहीं है और अभी अंदर विद्यमान ही नहीं है तो वो कहां से आएगा, सामर्थ्य यदि अंदर नहीं हो तो आएगी कहां से। और जो अभी अंश प्रकट है वह यदि पूर्ण ज्ञान का अंश नहीं मानेंगे या उसको भी अयथार्थ मानेंगे, एक अंश अयथार्थ हुआ, एक अंश अमंगलपना अगर उसमें मानेंगे, मिथ्या दृष्टि का भी जो ज्ञान है उसको यदि हम अमंगल मानते हैं तो अनेक अंशों का स्वरूप वो भी अमंगल हो जाएगा। कल प्रश्न उठाया था ना, देखो जरा फिर इसको यहाँ देखते, क्योंकि ये बातें बहुत अपने कंफ्यूजन चलती है। 38 पेज पर हमने देखा था नीचे से वो दूसरी शंका, नीचे से दूसरी शंका 38 पेज पर, नीचे से दूसरी शंका कि आवरण से युक्त जीवों के यानी छद्मस्थ जीवों के ज्ञान और दर्शन मंगलीभूत केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव ही नहीं हो सकते, ये उसके अवयव है ही नहीं, ऐसा कोई अगर प्रश्न पूछते हैं तो उसका समाधान है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न ज्ञान और दर्शन का सद्भाव नहीं पाया जाता है, यानी जो ज्ञान गुण है जिसमें केवल ज्ञान और दर्शन गुण में केवल दर्शन की शक्ति है, इसी के तो अंश अभी प्रकट है। अभी जो मिथ्यात्व अवस्था हो या कोई भी अवस्था हो, छद्मस्तों की जो अवस्था है उसमें जो ज्ञान प्रकट है वो परिपूर्ण ज्ञान सामर्थ्य का अंश है, उसको केवल ज्ञान का अंश कहा। वो केवल ज्ञान पर्याय वाला केवल ज्ञान नहीं लेना है, ख्याल आता है ना। हम केवल ज्ञान कहते हैं, हमारी पर्याय पर दृष्टि चली जाती है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। ज्ञान गुण कैसा है, ज्ञान गुण में पूरी शक्ति पड़ी है कि नहीं पड़ी है, सर्वज्ञत्व शक्ति पड़ी है ज्ञान गुण में, परिपूर्ण शक्ति पड़ी है। और अभी जो अंश प्रकट है वो परिपूर्ण शक्ति का अंश प्रकट है। यदि हम उसमें अमंगलपना मानते हैं तो केवल ज्ञान जब परिपूर्ण प्रकट होगा, एक एक अंश ज्यादा ज्यादा अगर हम मानेंगे तो सभी अंशों में या सभी परिपूर्ण ज्ञान में भी अमंगलपना मानना पड़ेगा। फिर प्रश्न पूछते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से अतिरिक्त मति ज्ञान आदि ज्ञान और चक्षु दर्शन आदि दर्शन तो पाए जाते हैं, इनका अभाव कैसे किया जा सकता है। प्रश्नकार ने ये पूछा है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न ऐसे जो मति शुद्ध ज्ञान आदि और चक्षु दर्शन आदि पर्याय अभी देखने में आती है और आप कहते हैं वो केवल ज्ञान का अंश है, तो उसके लिए उत्तर है कि उस ज्ञान दर्शन संबंधी अवस्थाओं की मति ज्ञान आदि और चक्षु दर्शन आदि नाना संज्ञाएं है, उसको हमने नाम दिया है। आंशिक ज्ञान जो अभी प्रकट है उसको हमने अलग अलग नाम दिए है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, परंतु है तो ये परिपूर्ण ज्ञान जो है उसी के ये अंश है। यथार्थ में इन सब अवस्थाओं में रहने वाले ज्ञान और दर्शन एक ही है। फिर प्रश्न पूछा था, जो कल की बात हमने देखी थी, क्या प्रश्न है देखो 39 पेज पर शंका जो हमने कल पढ़ी थी, जरा रिपीट करेंगे इसको। केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अंकुर रूप छद्मस्थों के ज्ञान और दर्शन को मंगलपना प्राप्त होने पर, यह शंकाकार की शंका है, यदि हम उसको केवल ज्ञान का अंश मानेंगे, मिथ्यात्व अवस्था में जो ज्ञान है उसको यदि केवल ज्ञान का अंश मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल संज्ञा को प्राप्त होता है। मिथ्या दृष्टि जीव को भी मंगल कहना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव में भी वे अंकुर विद्यमान है। प्रश्न समझ में आया? देखो अभी पहले से हम क्या एस्टेब्लिश करते हैं, अभी जो छद्मस्थों का ज्ञान प्रकट है वो केवल ज्ञान का अंश है, वो परिपूर्ण ज्ञान का एक देश प्रकट हुआ है। पूर्ण तो ज्ञान प्रकट नहीं है, बराबर, तो उस जो एक अंश प्रकट है उसको भी यहाँ मंगल कहा है, बराबर। इतनी बात ख्याल में आई? क्योंकि यदि वो मंगल नहीं होगा तो जिसका वो अंश है वो भी, उसको भी मंगल नहीं कह सकते। एक बात, फिर दोबारा प्रश्न क्या पूछ रहे यहाँ कि ऐसा है तो जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है उसको भी मंगल मानना पड़ेगा। प्रश्न ख्याल में आया ना? देखो मिथ्या दृष्टि जीव में भी वे अंकुर विद्यमान है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन का जो अंश है वो मिथ्या दृष्टि, कोई भी जीव बिना ज्ञान का है ही नहीं, निगोद का भी जीव कुछ न कुछ ज्ञान की प्रकट अवस्था वहां है ही है। ज्ञान गुण है परंतु पर्याय में ज्ञान प्रकट नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, बराबर। इतना क्यों विचार करते हैं? निगोद जीव में भी हमें वो पर्याय समास वगैरह ज्ञान के भेद देखे थे हमने, यानी कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसमें थोड़ा भी ज्ञान प्रकट नहीं हो, बिल्कुल जड़ हो जाए पुद्गल जैसा, ऐसा है ही नहीं कभी। तो क्या कहते हैं, तो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को भी मंगल कहना पड़ेगा, ऐसा यहाँ प्रश्न पूछ रहे। उसका समाधान है, यदि ऐसा है तो भले ही मिथ्या दृष्टि जीव को ज्ञान और दर्शन रूप से मंगलपना प्राप्त हो। क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव को मंगलपना क्यों कहा, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से मंगलपना क्या, अगर उनकी ज्ञान की तरफ दर्शन की तरफ देखते हैं तो उसमें मंगलपना है। परंतु आगे पढ़ लेना, ये वाक्य पूरा नहीं हुआ, किंतु इतने से मिथ्यात्व अविरति आदि को मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता। उनके मिथ्यात्व अविरति आदि जो है वहां विभाव है उसमें मंगलपना नहीं है, परंतु मिथ्यात्व अवस्था में भी जो ज्ञान दर्शन है, जो स्वभाव का अंश है, जो परिपूर्ण स्वभाव का अंश है, जिसको केवल ज्ञान का अंश यहाँ कहा है, वो मंगल है। ये बात यहाँ समझा रहे। अब आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था। विभाव रूप परिणमन है परंतु वो भ्रम है ना, मिथ्यात्व के कारण भ्रम है। ये जो आत्मा संबंधी निर्णय होगा, सर्वज्ञ का निर्णय होगा, ये जो बातें होगी सब, तत्व का निर्णय होगा, तत्व का विचार चलेगा, वो कौन से ज्ञान में चलेगा? मिथ्यात्व अवस्था में अपने पास साधन क्या है? अभी ज्ञान ही है ना वही, कि जिसमें ये सभी निर्णय होकर सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान में कोई अमंगलपना नहीं है, वो मिथ्यात्व के साथ इतना एकमेक हो गया है, इसलिए उस अपेक्षा, मिथ्यात्व की अपेक्षा, उसको मंगल कहते हैं। परंतु ज्ञान इटसेल्फ अगर देखे तो ये तो स्वभाव का अंश है। तो ज्ञान को यहाँ अलग, ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा बताया। अपेक्षित कथन हमेशा होता है, तो वो अपेक्षा बराबर ख्याल में लेना चाहिए। अब यहाँ तक हमने कल पढ़ा। देखो यहाँ शंका पूछते है, मिथ्या दृष्टि जीव सुगति को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान में समीचीनता नहीं पाई जाती। प्रश्न क्या पूछा? कि उनका जो ज्ञान है वो यथार्थ नहीं है, समीचीन नहीं है, योग्य नहीं है, तथा समीचीनता के बिना उन्हें सुगति नहीं मिल सकती है, फिर मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन को मंगलपना कैसे है? दोबारा प्रश्न वही पूछा कि वे तो सुगति में नहीं दुर्गति में चले जाते हैं, तो उनके ज्ञान में मंगलपना आप कैसे कहते हो? अब उसका समाधान पढ़ेंगे। ऐसी शंका करनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं? अब ये पूरा बड़ा वाक्य है, हम उसको पढ़ेंगे, फिर एक एक करके मैं समझाऊंगी। आप तक के स्वरूप को जानने वाले छद्मस्थों के ज्ञान दर्शन को केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव रूप से निश्चय करने वाले, ये पूरा एक वाक्य है। हा? क्या पहली बात कौन सी की है? आप्त के स्वरूप को जानने वाले। दूसरी बात, जो अभी छद्मस्थ अवस्था में जो ज्ञान दर्शन है वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन का अवयव है, ऐसा जो निर्णय कर रहे हैं, ऐसा जो निश्चय कर रहे हैं, ऐसे करने वाले, और आवरण रहित अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन रूप शक्ति से युक्त आत्मा का स्मरण करने वाले, ये तीन विशेषण हुए। ऐसे कौन है? सम्यक दृष्टि। पहला विशेषण क्या है? कि आप्त के स्वरूप को जानते हैं। दूसरा विशेषण बताया कि जो छद्मस्थों का ज्ञान दर्शन है और जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है उसी का वो अंश है, उसका वो अवयव है, अवयव है यानी उसका अंश है, उसका अंग है, ऐसा जिसने निर्णय किया है। और क्या? कि आवरण रहित ऐसा जो अनंत ज्ञान दर्शन रूप शक्ति से युक्त आत्मा, किसका? सिद्धों का कि अरिहंतों का? निज, ये सम्यक दृष्टि लिया ना, अपने निज आत्मा का स्मरण करने वाले। ज्ञान में किसको लेना है? अपने निज शुद्ध आत्मा को लेना है, और वो कैसा है? अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति से युक्त है। शक्ति से युक्त की बात चल रही है, पर्याय की बात नहीं हो रही है। ऐसे जो सम्यक दृष्टि है, अब यहाँ तक समझ में, ये तीन विशेषण सम्यक दृष्टि के बताएं। तो ऐसे सम्यक दृष्टियों के ज्ञान दर्शन में जिस प्रकार पाप का क्षयकारीपना पाया जाता है, यानी सम्यक दृष्टियों का ज्ञान जैसे पाप का क्षय करने में समर्थ है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में भी पाप का क्षयकारीपना पाया जाता है। क्योंकि वो जब तत्व सुनेगा, तत्व का उस पर विचार करेगा, उसका निर्णय करने तक चला जाएगा, करण लब्धि में चढ़ जाएगा, तब तक तो मिथ्या तो है ना, उसपे उसके पास ज्ञान तो वही है। तो जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है, सम्यक दृष्टि में क्या हुआ? उसने यथार्थ निर्णय कर लिया है। परंतु ज्ञान तो पहले भी इतना ही शुद्ध था, उसका इतना ही पवित्र था। पहले भ्रम में था, वो भ्रम दूर हुआ, और वो भ्रम दूर होने में उसी का अपना ज्ञान कार्यकारी है। कोई दूसरा मिथ्यात्व के साथ वाला ज्ञान छोड़कर और कोई ज्ञान पहले आने वाला नहीं है कि जिसमें ये सारा निर्णय होने वाला है। उसको अपने ज्ञान संबंधी निर्णय करना है कि ये जो अभी प्रकट ज्ञान है, ये जो अंश है, वो केवल ज्ञान का परिपूर्ण शक्ति का अंश है, और उस शक्ति को उस ज्ञान में स्वीकार करना है। ख्याल है? इसलिए मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन को भी मंगलपना होने में विरोध नहीं है। यहाँ मिथ्यात्व को नहीं, वो मिथ्या दृष्टि कहने से उस मिथ्यात्व पर्याय पर जोर नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव लिया, जीव द्रव्य लिया, और उसका ज्ञान दर्शन स्वभाव का अंश लिया, तो ये स्वभाव का अंश तो मंगल ही है, क्योंकि उसी स्वभाव के अंश द्वारा परिपूर्ण स्वभाव का निर्णय हो जाएगा, तो पर्याय में भी परिपूर्णता प्राप्त होगी। निर्णय में यानी वो स्वीकार नहीं ना इस जीव को अभी तक, मैं तो क्या ऐसा है, हीन दीन हूं, ऐसा ही मान लिया इसने आज तक। अथवा अब ये निक्षेप आ गया, हमने ये देखा था ना कि नो आगम भावी द्रव्य मंगल की अपेक्षा मंगल अनादि अनंत है। ये मंगल अनादि अनंत कैसा है, साधि शांत कैसा है, उसकी चर्चा चल रही है। अब ये कौन सा लगाया, इसकी जरा रिवीजन करेंगे ना, नो आगम भावी, बराबर। ये प्रतिभाताई ने उसका चार्ट भी बनाया, अभी दिखेगा कुछ नहीं, मैं खाली ऐसा करूंगी तो आपको कितने डिविजन है उतने का पता चलेगा। तो शास्त्र के छह बातें वो लिखी है, यह निक्षेप लिखा है। तो निक्षेप में छह निक्षेप हमने देखे थे, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, क्षेत्र निक्षेप, काल निक्षेप, भाव निक्षेप, ये छह निक्षेप देखे थे। नाम और स्थापना तो आसान है, अभी हमने देखा था, उसको बहुत बार चर्चा की। द्रव्य निक्षेप में कितनी बातें आती है, तो जब जब द्रव्य निक्षेप कहते हैं तो उसमें पहले मूल पॉइंट क्या लेना कि वर्तमान पर्याय क्यों वहां कंसीडर नहीं करना है, वर्तमान पर्याय से युक्त वाले द्रव्य को भाव निक्षेप में डालेंगे, द्रव्य निक्षेप में वर्तमान पर्याय वाला नहीं लेना। तो द्रव्य निक्षेप के दो भेद किए थे, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप में अभी मंगल संबंधी चर्चा चल रही है, तो मंगल संबंधी आगम शास्त्र को जानने वाला जो जीव है, जानने वाला जीव, ज्ञाता कहा उसको, परंतु वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है, ऐसा जीव को आगम द्रव्य निक्षेप उसको कहेंगे, आगम द्रव्य मंगल कहेंगे। मंगल की बात चले ना, आगम द्रव्य मंगल। नो आगम द्रव्य मंगल किसको कहना, अकेले शरीर को नहीं, क्योंकि नो आगम के तीन भेद करेंगे हम। तो नो आगम में किसको किसको लेना, तो जो जानने वाला है, हा? अभी नो आगम में तीन बातें ले ली हमने। देखो नो आगम द्रव्य निक्षेप में, नो आगम द्रव्य मंगल में लेना है इसको। अच्छा, नो आगम द्रव्य मंगल में हमने क्या देखा था, तीन भेद किए थे, एक ज्ञायक शरीर, एक भावी और तद्व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर में उस जीव का शरीर लेना है कि मंगल शास्त्र का ज्ञाता है, वर्तमान में उसमें उपयुक्त नहीं है, ऐसे जीव का शरीर, तो ऐसे इन्हें जानने वाले जीव का शरीर, तो वो शरीर हो सकता है भूतकाल का, वर्तमान का या भविष्य का। तो भूतकाल का था, उसमें हमने फिर तीन भेद देखे थे, किस तरह से वो मरा था लास्ट यानी अगले भव में, पहले भव में, तो च्युत, चावित और त्यक्त। त्यक्त में भी तीन प्रकार से संलेखना हमने देखी थी, हाँ, प्रायोपगमन, इंगी निमरण और भक्त प्रत्याख्यान। उसमें भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद देखे थे। ये बात हमारी वहां चली गई ज्ञायक शरीर में। ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल में शरीर की बात की थी। अब यहाँ जो बताया ना, भावी नो आगम द्रव्य मंगल, इसमें वो आगम का ज्ञाता अभी नहीं है, परंतु वह जीव भविष्य में आगम का ज्ञाता होने वाला है, उसको भावी नो आगम द्रव्य मंगल का, वही बात यहाँ देखिए, देखो यहाँ लिखे ना नो आगम भावी द्रव्य मंगल की अपेक्षा, यानी वो जीव अभी ज्ञाता नहीं है शास्त्र संबंधी परंतु भविष्य में है, उसको लेना यहाँ। तद व्यतिरिक्त में हमने कर्म नोकर्म की बात की थी, अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, यानी तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है उसको भी एक कर्म की अपेक्षा, यानी वो तद व्यतिरिक्त वाला कर्म का जो भेद है ना, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल कहा था। तो यहाँ ये नो आगम भावी द्रव्य मंगल की अपेक्षा मंगल अनादि अनंत है, यानी उस जीव द्रव्य में आगे चलकर मंगलपना प्रकट होने वाला है, तो उसको द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा, द्रव्य वही का वही रहने वाला है तो द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा उसको हम स्वीकार करेंगे मंगल, तो उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसके पर्याय जो है मिथ्यात्व की उसकी तरफ हम नहीं देख रहे हैं, हम उसके द्रव्य को देख रहे हैं, तो द्रव्य तो अनादि अनंत वही रहने वाला है, तो भविष्य काल में जब कभी वो केवल ज्ञान प्रकट होगा उस अपेक्षा से उस जीव द्रव्य को ही मंगलपना कहा है, इसलिए अनादि अनंत मंगलपना उसमें स्थापित हो सकता है। वो तो प्रकट करने वाला नहीं है, हाँ शास्त्र का अभ्यास करने वाला है परंतु उस पर्याय से परिणत नहीं होने वाला है, ख्याल है ना। देखो इसका विशेषार्थ करते हैं, आगे आगे पढ़ेंगे ना। हाँ। विशेषार्थ, जो आत्मा वर्तमान में मंगल पर्याय से युक्त तो नहीं है किंतु भविष्य में मंगल पर्याय से युक्त होगा, उसके शक्ति की अपेक्षा से अनादि अनंत रूप मंगलपना बन जाता है। ये शक्ति अपेक्षा लेना वहां, रत्नत्रय को धारण करके कभी भी नष्ट नहीं होने वाले रत्नत्रय के द्वारा ही प्राप्त हुए सिद्ध स्वरूप की अपेक्षा नैगम नय से मंगल सादि अनंत है। सादि क्यों कहा, रत्नत्रय प्रकट हुआ तो उसको आदि है ना, पहले नहीं था, रत्नत्रय प्रकट हुआ, अब रत्नत्रय प्रकट हुआ तो अभी वो ऐसा कोई जीव होगा तो अभी वो मिथ्यात्व में जाएगा नहीं कभी, वो तो सिद्ध अवस्था लेकर ही भले दो चार भव चले जाए परंतु उसका सम्यक तो भी नहीं छूटेगा, उसका रत्नत्रय भी रहेगा तो वह सिद्धपना प्राप्त करेगा, तो उसके लिए सादि अनंत कहा। और ऐसा कोई जीव होगा रत्नत्रय प्रकट किया फिर मिथ्यात्व में गया, सादि शांत हो जाएगा, वहां पर्याय की अपेक्षा ले रहे हैं। विशेषार्थ, रत्नत्रय की प्राप्ति से सादिपना और सादि यानी स प्लस आदि, सबको पता होगा शायद नए कोई जीव है लोग अशोक भाई पता है ना, सादि यानी क्या, स प्लस आदि, जिसको आदि है उसको सादि कहते, अन प्लस आदि जिसको आदि नहीं है जो अनादि से उसको अनादि कहते, शांत यानी स प्लस अंत, जिसका अंत आ जाता है जैसे मिथ्यात्व तो कैसा है अनादि से था अंत आ गया तो उसको हम अनादि शांत कहेंगे, और अनंत यानी जिसका अंत नहीं है, ऐसे चार शब्द आते हैं अनादि सादि फिर शांत और अनंत। तो रत्नत्रय की प्राप्ति से सादिपना, पहले रत्नत्रय नहीं था वो प्राप्त हुआ इसलिए सादि कहा उसको, रत्नत्रय प्राप्ति के अनंतर अनंतरय ने पश्चात सिद्ध स्वरूप की जो प्राप्ति हुई है उसका कभी अंत आने वाला नहीं है। इस तरह इन दोनों धर्मों को ही विषय करने वाले नैगम ने की अपेक्षा मंगल सादि अनंत है। दोनों को लिया ना, सादि को भी लिया अनंत को भी लिया, नैगम का अर्थ होता है न एकम, एक को नहीं दोनों को पकड़ा उसने। नैगम नय की चर्चा हमने की नहीं है अभी तक, हमने अन्य जो है ना द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक देखे थे, द्रव्यार्थिक में किस किस को देखा था, हाँ नैगम, नैगम की चर्चा नहीं की थी पर नैगम को उसमें लिया था, नैगम संग्रह और व्यवहार, और पर्यार्थिक नय में रुजु सूत्र शब्द पहले लेना, शब्द समविरूढ़ और एवं भूत। द्रव्यार्थिक नय में तो वहां पर्याय की चर्चा नहीं थी, अगले वाले जो चार है उसमें वर्तमान पर्याय से युक्त वाला लिया, यानी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा है, तो रुजु सूत्र नय ने जिसको एक्सेप्ट कर दिया तो अभी आगे आगे फिल्टर लगेंगे, शब्द नहीं कहेंगे, इसमें कोई व्याकरण अपेक्षा, लिंग अपेक्षा, वचन अपेक्षा कोई अशुद्धि हो तो हम स्वीकार नहीं करते। तो जो जो रुजु सूत्र ने इन्हें एक्सेप्ट किया उसमें से उसने कुछ को सिलेक्ट किया, वो शब्द नहीं हुआ। शब्द ने इन्हें जितना जितना स्वीकार किया है अगला समय भी रूढ़ सबको नहीं स्वीकार करेगा। तो उसमें भी विशिष्ट जो अर्थ है उसमें निरुक्ति अर्थ सिद्ध होता है उसको ले लेगा। जिसने यानी समय भी रूढ़ ने जिसका स्वीकार किया उसके अगले वाला एवं भूत ने कहेगा क्या वर्तमान में वो जीव ऐसा क्रिया कर रहा है अभी, तो ही हम उस शब्द को स्वीकार करेंगे अन्यथा नहीं। यानी रुजु सूत्र में तो पर्याय की बात की और उसके लिए बताने वाले जो शब्द है उस शब्दों में अगले अगले नयों में वो शब्द नहीं के भेद है, सब शब्दों में वो प्यूरिफिकेशन शुद्धता होती गई, सूक्ष्मता सूक्ष्मता होती गई, ख्याल है ना। तो अभी यहाँ क्या बात चल रही है अपनी नैगम ने, इसकी फिर विस्तार से चर्चा आगे आने वाली है, अबाउट 80-85 पेज के आसपास ये सब चर्चा फिर चलेगी इसमें नयों की निक्षेपों की। सम्यक दर्शन की अपेक्षा मंगल साधि शांत समझना चाहिए, उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यानी सम्यक दर्शन छूट जाता है ना फिर मिथ्यात्व में चला जाता है, तो उसको आदि है इसलिए साधि कहा, और सम्यक दर्शन छूट कर मिथ्यात्व में गया तो उसका अंत हो गया इसलिए साधि शांत कहा उसको। और उत्कृष्ट काल जघन्य काल अंतर्मूर्त, हमने कम से कम अंतर्मूर्त तो रहेगा ही, उपशम सम्यक्त्व का भी जघन्य काल तो उतना है ही है, उत्कृष्ट भी और जघन्य भी, और क्षोपम सम्यक्त्व का भी जघन्य काल अंतर्मूर्त है, और क्षायिक सम्यक्त्व का जघन्य काल कितना है? हाँ अशोक भाई आप कुछ कहेंगे, क्षायिक सम्यक्त्व का जघन्य काल आपको नहीं मालूम? हाँ तेजु भाई, क्षायिक सम्यक्त्व का, हाँ आप बोलो हाँ उसमें जघन्य काल नहीं, एक बार प्रकट हुआ तो अनंत काल तक क्षायिक सम्यक्त्व कभी छूटने वाला नहीं, उसको कहते क्षायिक सम्यक्त्व, क्या है अनंत काल तक रहने वाला है। और उत्कृष्ट काल कितना है सम्यक दर्शन का, तो ये भी यहाँ अपेक्षा है, वो क्षोपम की बात की है, क्योंकि उपशम का औपशमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल तो एक अंतर्मूर्त रहता है, भले वो प्रथमोपशम हो या द्वितीयोपशम, और क्षायिक तो अनंत काल तक रहने वाला है। तो यहाँ जो बात है वो क्षोपमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर प्रमाण है। ये 66 सागर कैसे होते हैं आदि सभी चर्चा आगे मार्गणा के विषय में आएगी, यहाँ का वो विषय नहीं है, यहाँ तो इतना ही बताया कि सम्यक्त्व में सादी अनंत सादी शांतपना हो सकता है। अब हमारा अनुयोग का छठा पॉइंट आया, यहाँ कदी विधो यानी कितने प्रकार का है। पहला प्रश्न क्या पूछा था, पदार्थ क्या है, मंगल क्या है, दूसरा मंगल किसके होता है, तो हमने जीवो मंगलम कहा था, जीव ही मंगल है, जीव के मंगल होता है। तीसरा प्रश्न क्या था, के ने यानी किसके द्वारा मंगल होता है। फिर चौथा प्रश्न क्या था, कथ हाँ कहाँ पर होता है, किसमें होता है, बराबर पहले तो किसके होता है पूछा था, फिर हाँ कहाँ पर होता है, किसमें होता है अधिकरण पूछा था, और फिर कितने काल तक वो रहता है, और अभी जो कितने प्रकार का है ये छठा पॉइंट चल रहा है। अनुयोग का अर्थ हमने देखा था, अनु और योग, योग यानी जुड़ान करना, यानी पहले कुछ संदर्भ आए हैं उसके साथ इसका जुड़ान कर देना, पूर्व के संदर्भ के साथ इसको मिलाना जुड़ान करना, उसको अनुयोग कहा था, है ना, क्योंकि सूत्र तो अनु यानी छोटे होते हैं और उसका अर्थ तो बहुत गंभीर होता है, तो पूर्व पूर्व के सूत्रों के द्वारा वो तो कंटिन्यूटी चली आती है, तो ये कंटिन्यूटी कहाँ से चली आई, तत्वार सूत्र में बहुत बार ऐसी बातें आती है कि वो पूर्व सूत्र से उसकी वो तो आगे आगे उसका वो एकाध शब्द ऐसा होता है वो आगे आगे तक चला जाता है, तो उसको कहते हैं उसका अनुयोग वो चल रहा है, उसकी कंटिन्यूटी आगे तक चलती है। अब ये मंगल कितने प्रकार का है इसकी बात अभी चलेगी। पहले हमने जो 8 प्रकार देखे थे वो किसमें लगाए थे याद है, हाँ एक जीव अनेक जीव, एक अजीव अनेक अजीव, फिर उसके कॉम्बिनेशन, तो वो मंगल के आधार क्या है उसको देखा था। एक जीव में एक जिनेन्द्र भगवान लिया था, एक अजीव में एक जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा ली थी, इस तरह से मंगल के आधार। और यहाँ कौन सी बात चल रही है, मंगल कितने प्रकार का है वो यहाँ बात बता रहे। मंगल सामान्य की अपेक्षा मंगल एक प्रकार का है, उसको मंगल सामान्य का इन जनरल। और मुख्य और गौण के भेद से दो प्रकार का है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के भेद से तीन प्रकार का है, धर्म सिद्ध साधु और अरहंत के भेद से चार प्रकार का है। आपका कोई ऐसी लाइन पता है कि ये चार प्रकार के बताए हैं? चत्तारी मंगल रोज हम कहते ना, चत्तारी चत्तारी नहीं चार, चार मंगल है। हम तो कहते अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम और आगे क्या, हाँ केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। तो ये धर्म यानी केवली प्रणित धर्म, सिद्ध साधु और अरहंत के भेद से मंगल चार प्रकार का है। दर्शन ज्ञान और तीन गुप्ती, कौन सी तीन गुप्ती होगी? मनोगुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती। इस तरह से मंगल पांच प्रकार का होगा, अथवा जिनेन्द्र देव को नमस्कार हो इत्यादि रूप से अनेक प्रकार का है। हम जितनी अपेक्षा लगाएंगे छह प्रकार का सात प्रकार का आठ प्रकार का उतने उसमें प्रकार लग सकेंगे, तो अनेक प्रकार का होगा। अथवा मंगल के विषय में छह अधिकारों द्वारा दंडकों का कथन करना चाहिए, वे इस प्रकार है। यानी मंगल के बारे में ये छह बातें बताना चाहिए जिसको यहाँ दंडक कहा है, वो कौन कौन सी है? एक पहला मंगल, दूसरा है मंगल कर्ता, तीसरा है मंगल करणीय, चौथा मंगल उपाय और पांचवा है मंगल भेद, छठा है मंगल फल। अब इन छह अधिकारों का अर्थ कहते हैं, वो कितने छह 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 में हम चले जाए। मंगल का अर्थ तो पहले कहा जा चुका है, अब मंगल कर्ता कौन है उसकी बात है। दंड कहने उसके भेद प्रकार, चौदह विद्यास्थानों के पारगामी आचार्य परमेष्ठी मंगल करता है। यहाँ आचार्य परमेष्ठी को मंगल करता कहा, और भव्यजन मंगल करने योग्य है। ऊपर छह बातें बताई ना, मंगल करणीय कौन है? तो भव्यजन, क्योंकि उसमें मंगल पर्याय प्रकट होगी तो मंगल करणीय कहा उनको। अब मंगल का उपाय क्या है? तो रत्नत्रय की साधक सामग्री मंगल का उपाय है। तो रत्नत्रय की साधक सामग्री कहाँ पर होगी? दीक्षा लेना बाह्य व्रत करना, ये होगी कि नहीं होगी? तो अंतरंग सामग्री अंदर ही पड़ी है, अपने अपना जो त्रिकाली है स्वभाव है उसकी दृष्टि करना तो मंगल पर्याय से परिणत होगा जी। तो उसकी सामग्री कोई बाह्य सामग्री ढूंढने की बात यहाँ नहीं है, उपचार से बाह्य में भी कहने में आएगा कहीं कहीं। जैसे यहाँ व्रतों को भी कहा था, व्यवहार व्रतों को भी उपचार से वो नाम दिया था, पहले हमने देखा था ना, अनुव्रत महाव्रत देव पूजा अर्चा उसको भी हमने मंगल कहा था, औदयिक भाव को मंगल कहा था यहाँ। तो ये अपेक्षा अपने बराबर ख्याल में आनी चाहिए, ये मंगल का उपाय हो गया। अब मंगल भेद, एक प्रकार का मंगल दो प्रकार का मंगल इत्यादि रूप से मंगल के भेद पहले कहे आए हैं। अभी अभी हमने ऊपर देखे थे दो प्रकार से तीन प्रकार से, मैं समय दर्शन ज्ञान चारित्र को लिया, फिर चार प्रकार से अभी धर्म अरियंत सिद्ध साधु वगैरह लिए, अभी मंगल का फल रह गया। अभ्युदय और मोक्ष सुख मंगल का फल है। अभ्युदय ने लौकिक जो सुख प्राप्त होता है, अभी राज्य पद मिला चक्रवर्ती हुआ, ये सब अभ्युदय कहेंगे उसको। और सच्चा फल तो ये मोक्ष सुख की प्राप्ति, वही उसका फल है। अर्थात जितने प्रमाण में यह जीव मंगल के साधन मिलाता है उतने ही प्रमाण में उससे जो यथा योग्य अभ्युदय और निःश्रेयस सुख मिलता है वही उसके मंगल का फल है। निःश्रेयस सुख है ने मोक्ष सुख, निःश्रेयस है ने मोह, अकेले श्रेयस भी कहते हैं निःश्रेयस भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जितने प्रमाण में मंगल के साधन, जितनी आत्मस्थिरता करेगा उतने प्रमाण में उसके ये कि वो आत्मस्थिरता से उसको अभ्युदय मिलेगा क्या? नहीं, आत्मस्थिरता अधिक तो जो साथ में जो पुण्य होगा उसका वो उच्च प्रकार का होगा। चौथे वाले के पुण्य से पांचवे वाले का पुण्य राग भाव कम घट रहा है परंतु पुण्य की क्वालिटी बढ़ रही है, ख्याल है ना। राग भाव की तरफ देखो तो चौथे से वो छठे वाले का राग कम है, परंतु जितना है वो अत्युच्च क्वालिटी का है, ऐसा उसमें अगर हम तरतमता कहेंगे तो, यानी वहां कोई भी उच्च नीच है नहीं, ऐसा वो अपेक्षा यहाँ नहीं है, ख्याल में है ना। यानी पुण्य को, सभी पुण्य को हमने हेय कहा है, उसकी बात यहाँ नहीं है। हाँ। वह मंगल ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में कहना चाहिए। अभी तो पहले में शुरुआत में मंगल किया है, तो कहते कि ऐसा जो मंगल है वो पहले भी करना चाहिए, मध्य में भी करना चाहिए और बाद में भी, अंत में भी करना चाहिए। हाँ, 14 विद्या स्थान क्या कहते भाई आप? हाँ, 14 12 ही अंग है। आप क्या कहते? कुछ नहीं कहते। अच्छा, 14 पूर्व की बात है या 14 पूर्व कहेंगे तो उसका अर्थ होता है द्वादशांग के ज्ञाता, क्योंकि जो 14 पूर्व है वो दृष्टिवाद नाम का जो 12वां अंग है उसके बहुत सारे भेद है, प्रथमानुयोग, पूर्वगत वगैरह, चूलिका, परिक्रमा, तो उसमें से जो 14 पूर्व है उसके ज्ञाता, यानी पूर्व परिपूर्ण ज्ञान द्वादशांग के ज्ञाता के लिए 14 पूर्व के ज्ञाता कहने में आता है। तो कोई तो परिपूर्ण ज्ञान वाले हो गए 14 पूर्व के हो गए, उसमें से उसमें से कोई तो अन्य नहीं थोड़ा जानेंगे, 14 की 14 पूर्व नहीं, कोई 10 पूर्वी भी हो गए, कोई एक पूर्व के ज्ञाता भी हो गए, तो यहाँ मैक्सिमम लिया 14 पूर्व वाले। ये 14 विद्यास्थानों की बात है, ये 14 विद्यास्थानों की बात आगे भी आएगी अरिहंत के स्वरूप में, ये आचार्य के स्वरूप में आने वाली है। हाँ, 49 आयरयाणम। हाँ, देखो पेज नंबर 50 पर है, पहली लाइन में, जो 14 विद्यास्थानों का पारंगत है, लिखा ना, या 11 अंग का धारी है, 11 अंग लिया, अथवा आचारांग मात्र का धारी है, अकेले एक ही अंग का ज्ञाता है, अथवा तत्कालीन स्व समय और पर समय में पारंगत है, यानी वो क्योंकि आचार्य है ना, तो अभी हम देखते हैं कि वो ज्ञान की हीनता होती चली आ रही है, फिर भी वो आचार्य जो है उनका स्वरूप तो वैसा ही है, अंतरंग में जो उनकी वितरकता है, फिर भी बाह्य में उनके ज्ञान का उघाड़ कम ज्यादा हो सकता है, तो कोई 14 पूर्व का होगा, कोई 11 अंग का ही ज्ञाता है, कोई एक ही अंग का ज्ञाता है, या उसमें भी जो कुछ यथा योग्य है उसके ज्ञाता है। अब अपना मूल विषय, ये 14 विद्या स्थान हो गए, अब हम 41 पेज पर आए हैं, पहले गाथा पढ़ेंगे। आदि अवसान मच्छे पन्नत्त मंगलम जिनं देहि तो कय मंगल विनयो इनमो सुत्तम पवखामि। उसका अर्थ नीचे है, देखो, जिनेन्द्र देव ने आदि, अंत और मध्य में मंगल करने का विधान किया है, अतः मंगल विनय को करके मैं इस सूत्र का वर्णन करता हूँ। कौन से सूत्र के वर्णन करने वाले अभी? हाँ, 19वें सूत्र में तो बताया कि मैं इस सूत्र का वर्णन करने वाला हूँ। नमो अरिहंतानम, उस सूत्र का वर्णन अब चलेगा। देखो उसमें वो एक नंबर लिया था ना हमने, ये इनके नंबर अलग है, और वो सूत्र का बोल्ड में एक लिखा था 8 नंबर के पेज पर, ये अभी हमने जो छोटे छोटे प्रिंट में लिखे हैं सूत्र जो है, ये गाथाएं जो है वो धवला की गाथाएं, वीरसेन आचार्य ने लिखी हुई है, और जो मूल षटखंडागम की गाथा जिसको एक नंबर लिखा था, बोल्ड टाइप में लिखा था नमो अरिहंतानम, है ना, उसके बाद अभी पश्चात दूसरा कोई आया नहीं है ऐसा, ये मूल सूत्र, मूल गाथा, तो उसका अर्थ अब करेंगे। अभी तक तो इंट्रोडक्शन हुई, कि ग्रंथ के पहले क्या कहना चाहिए, मंगल आदि वो छह बातें बताई, फिर मंगल का स्वरूप छह बातों से बताना चाहिए, निरूपण करना चाहिए, वो क्या है उसकी वो सब इंट्रोडक्शन चली अभी। अब ये जो मूल षटखंड अगम का जो नमो अरिहंतानम यानी नमोकार मंत्र है उसका अर्थ अब लगाएंगे, लिखा ना। हाँ उनका, हाँ उनके ओरिजिनल के, क्योंकि ये जो 19 वगैरह नंबर है ना ये इनके नंबर है। हम देखे देखो आठ पेज पर एक आंकड़ा उनका भी शुरू हुआ, धवला वाला का मंगल निमित्त है वगैरह। उसके पहले तो उन्होंने छह श्लोक तो मंगलाचरण के उनने भी किए थे क्या, और ऐसे 19 अभी चल रहे। और जो मूल पहला सूत्र जो श्लोक है या गाथा है उसकी चर्चा आप करेंगे, यानी नमो अरिहंतानम वाली गाथा अब उसका अर्थ करेंगे। पहली दो लाइन में फिर पढ़ती हूँ। जिनेन्द्र देव ने आदि अंत और मध्य में मंगल करने का विधान किया है, अतः मंगल विनय को करके, क्योंकि इन्होंने भी मंगल किया पहले, धवलाकार ने भी मंगल की गाथा की थी। पहली छह गाथाओं में सिद्धों को नमस्कार किया, अरहंतों को, ये गणधरों को वगैरह वगैरह, श्रुत देवता को हमने देखा था, दर्शन आचार्य को, बुध बलि और पुष्पवंत को, सबको नमस्कार किया था, सबका विनय किया था, और मंगल संबंधी जो कुछ प्ररूपणाएं वो भी बताई अभी। और अभी क्या कर रहे हैं, अतः मंगल विनय को करके मैं इस सूत्र का वर्णन करता हूँ। ये सूत्र यानी नमोकार मंत्र उसकी बात है।
देखिए यहाँ पर बात ऐसी है कि आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर इस तरह आएगा कि लिखित रूप से नमोकार मंत्र पहले यहाँ इस शास्त्र में अपने को मिलता है
षटखंडागम।
इसके पहले क्या कोई अनंत सिद्धों को नमस्कार करते होंगे कि नहीं, ख्याल में है ना, क्योंकि ये तो अनादि से है, लेकिन उसका जो भाव है उस अपेक्षा से अन्य तरीके से भी हो सकता है, लेकिन ये जो नमोकार मंत्र जो है वो अभी इसमें पहली बार हमको मिलता है लिखित रूप से, ये तो अनादि मूल मंत्र है, ख्याल में है ना, क्योंकि हम पांच परमेश्वरियों को प्रमाण मानते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, तो वो पहले से ही करते होंगे कि नहीं, बात ख्याल में आती है, लेकिन लिखित रूप से यहाँ पहले मिलता है।
देखो ये धवला का है कि षटखंड आगम का है, ऐसा कंफ्यूजन था ना। 42 पेज पर देखना नीचे की चौथी लाइन, यानी वो विशेषार्थ वाली तीसरी लाइन। इस व्यवस्था के अनुसार षटखंडागम के प्रारंभ में दिया गया नमोकार मंत्र निबद्ध मंगल है। वो निबद्ध अनिबद्ध की चर्चा हम करेंगे जब वहां आएंगे। यानी ये षटखंडागम का पहला मंगल सूत्र है। हाँ वो इस, नहीं वो मैंने अभी नहीं पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि वो विषय अपना पलट जाएगा, वहां तो आने ही वाले हैं। अभी तो हम 41 पर है ना, यहाँ अगले पेज पर आने ही वाले, परंतु ये षटखंडागम का प्रथम सूत्र है, प्रथम गाथा है, ये यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। यानी जो कुछ लिखित रूप से हमारे पास है उसमें पहले में पहले ये नमोकार मंत्र लिखा है और मूल प्राकृत में लिखा है। उसका वो फिर अपभ्रंश न हो गया ना उसका, मैं तो नमो उस पहले न का न कर दिया और आगे वाला अरिहंतानम वैसे ही रखा। यानी संस्कृत में बोलना है तो अरिहंतेभ्यो ऐसा कहना चाहिए, ख्याल है ना। हाँ अब शंका, ग्रंथ के आदि मध्य और अंत इस प्रकार तीन स्थानों में मंगल करने का उपदेश किस लिए दिया गया है, क्या प्रश्न बीच में ही शंका उपस्थित की। उन्होंने तक कहा था, मैं अभी वो पहला जो सूत्र है उसको यहाँ मंगल सूत्र कहा था, और हम ये गले में मंगल सूत्र बांधते हैं ना, वो वाली सूत्र की बात नहीं है। हाँ ये मंगल सूत्र गले में यानी कंठ में धारण करना है, नहीं समझे कौन सा वाला नमोकार मंत्र वाला मंगल सूत्र है, वो गले में यानी कंठ में धारण करना है, यानी क्या वो उसको याद करते रहना तो कल्याण होने वाला है, क्यों, और उसको कोई चुराएगा नहीं। पेपर में तो वही रोज पढ़ते ना, मंगल सूत्र को चोरी करके भाग दिया और जान देनी पड़ी किसी का, तो ये तो उसका वर्णन करने जा रहे थे। तो शंकाकार ने पहले पूछा कि ग्रंथ के पहले भी मध्य में और अंत में भी तीन तीन टाइम करने की क्या जरूरत है, एक बार कर दिया ना, तो तीन स्थानों में मंगल करने का उपदेश किस लिए दिया गया है? और ये उपदेश तो जिनेंद्र भगवान ने दिया है, कोई आचार्य अपने मन से ये रूल्स नहीं बना रहे। उसका समाधान, मंगल संबंधी आवश्यक कृतिकर्म करने वाले तथा मंगल संबंधी प्रायश्चित करने वाले, अर्थात मंगल के लिए आगे प्रारंभ किए जाने वाले कार्य में दुःस्वप्नादिक से मन में चंचलता आदि न हो, इसलिए अभी इसको छोड़ेंगे, वाक्य बहुत बड़ा है। क्या कहते हैं, कृतिकर्म करने वाले ये आचार्य आदि जो होते हैं, उनकी जो आवश्यक क्रियाएं होती है ना, अन्य भी कुछ, उसको कृतिकर्म कहते हैं। तो मंगल संबंधी जो आवश्यक कृतिकर्म करते हैं, और क्या है, मंगल संबंधी जो प्रायश्चित करते हैं, ये उनकी प्रायश्चित जो विधि है। अन्य मुनि भी अपने में कोई दोष लगते हैं तो आचार्य के सामने जाकर कहते हैं, और आचार्य जो उसकी प्रायश्चित विधि होती है उनकी, वो बताएंगे। प्रायश्चित का सच्चा अर्थ तो प्राय ने अपनी ओर, प्राय ने उसकी ओर, किसकी ओर, चित्त, अपने अपने में लीन होना ही सच्चा प्रायश्चित है। फिर भी उसकी जो कुछ व्यवहार विधि होगी तो वो भी उसमें भी वो निपुण होते हैं आचार्यादिक। तो ये कृतिकर्म करने वाले और प्रायश्चित करने वाले, अर्थात यानी आगे उसमें जो कुछ दोष लगेंगे उसके लिए पहले ही प्रायश्चित करेंगे या मंगल करेंगे कि आगे ऐसे दोष न हो। तो मंगल के लिए आगे प्रारंभ किए जाने वाले कार्य में, अभी जो कार्य शुरू होने वाला है, ग्रंथ रचने का जो कार्य शुरू होने वाला है, उसमें दुःस्वप्नादिक से मन में चंचलता आदि न हो, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप मंगलिक दधि अक्षत चंदन आदि को सामने रखने वाले और विनय को प्राप्त ऐसे शिष्य, अध्येता अर्थात पढ़ने वाले, श्रोता और वक्ता आरोग्य और निर्विघ्न रूप से विद्या तथा विद्या के फल को प्राप्त हो, इसलिए तीनों जगह मंगल करने का उपदेश दिया गया है। क्या कहते हैं, वो ग्रंथ रचना करने वाले या उपदेश देने वाले स्वयं, वक्ता या सुनने वाले श्रोता, तो श्रोताओं में उसमें पढ़ने वाले शिष्य और श्रोता ऐसे तीन भेद किए, यानी वो ग्रंथ को सुनने वाले, समझने वाले, उनके शिष्य यानी मुनिगण शिष्य भी उसमें ले सकते हैं या अन्य श्रावक श्रोता भी उसमें आ जाएंगे। तो इनके आरोग्य ठीक रहे और निर्विघ्न रूप से विद्या प्राप्त हो, और विद्या प्राप्त होने समझे, और विद्या का फल जो है, विद्या का फल यानी रत्नत्रय की प्राप्ति, वो भी उन्हें प्राप्त हो, इसलिए तीन तीन बार ये मंगल किया जाता है। शिष्य सरलता पूर्वक और ऊपर पढ़ेंगे पहले 20। आदिम हि भद्दवयनम शिष्या लहुपारया हवन्तोक्ति मज्जे अवोचित्ति विज्जा विज्जा फलम चरिमे। नीचे उसका अर्थ है, देखो, शिष्य सरलता पूर्वक प्रारंभ किए गए ग्रंथाध्ययनादि कार्य के पारंगत हो, इसलिए आदि में भद्रवचन अर्थात मंगलाचरण करना चाहिए। क्या कहते हैं, जो ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया है तो सभी शिष्य उसको सरलता पूर्वक समझे और उसमें पारंगत हो जाए, वो विद्या ग्रहण करे, वो ग्रंथ बराबर समझे, इसलिए शुरू में मंगलाचरण किया जाता है। प्रारंभ किए गए कार्य की विच्छित्ति न हो, यानी बीच में ही कोई बंद न पड़े कार्य, इसलिए मध्य में मंगलाचरण करना चाहिए, तथा विद्या और विद्या के फल की प्राप्ति हो, इसलिए अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। ग्रंथ तो समाप्त होने के पश्चात, तो इस तरह से ग्रंथ रचना की तो आप सब समझे और उसका फल भी प्राप्त हो, उसके लिए फिर दोबारा मंगल किया जाता है, फिर भगवान का नाम स्मरण वगैरह किया जाता है। यानी ग्रंथ के शुरू में, मध्य में और अंत में तीन तीन बार ये मंगल करने की पद्धति है। अब पहले दो लाइन के बाद 21 नंबर डालना है और वो 21वां श्लोक ऊपर है। विघ्ना प्रणश्यन्ति भयं न जातु न दुष्ट, ये अलग है। हाँ, विघ्ना प्रणश्यन्ति भयं न जातु न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति
अर्थान्यथेष्ठां च सदा लभन्ते जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन।
जिनेन्द्र, भगवान के कीर्तन से, उनके गुणानुवाद से क्या क्या होता है उसकी यहाँ चर्चा देखो। जिनेन्द्र देव के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न नाश को प्राप्त होते हैं, यानी विघ्न टल जाते हैं, कभी भी भय नहीं होता है और दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते हैं और निरंतर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। जिनेन्द्र भगवान का गुणस्तवन, गुणों का कीर्तन करो, पूजा अर्चा जो है उनके, उनके जो वितरागता है, उनका जो स्वरूप है, अकेले भगवान का नाम लेना और आधा आधा घंटा, दो दो घंटे उसकी पूजा करना, ये उसका अर्थ नहीं है। भगवान के जो गुण है, उनका जो स्वरूप है, उसका चिंतन करके उनके गुणों के प्रति जो अपने आदर बुद्धि उत्पन्न होती है उसको उनके गुणों का कीर्तन कहते हैं। उनके गुण ही पता नहीं है और मंदिर में जाके दो दो घंटा वहां पर बैठे रहे और पुस्तक में से पूजा पाठ करते रहे तो वो उसका गुणों का कीर्तन नहीं है। क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है, तो चलो हमें पैसे की प्राप्ति हो जाए तो मन में कोई यथेष्ट लिखा है तो यथेष्ट है ना, हमको तो पैसा ही दिखता है ना, हमको दूसरा क्या इष्ट है। तो उसके लिए यहाँ वहां जाकर पूजा करे तो ये तो लोभ हुआ, किसी लोभ के हेतु से, यानी किसी भी आशा से ये पूजा करना, ये तो पाप है। वहां लिखना, मैंने पहले बताया कि पहले दो लाइन के पश्चात 21 नंबर डालना। अभी 22 का अर्थ करने के पहले ऊपर से पढ़ेंगे।
आदौ मध्यवसाने च मंगलं भाषितं बुधैः तज्जिनेन्द्र गुणस्तोत्रं तद विघ्न प्रसिद्धये।
विद्वान पुरुषों ने प्रारंभ किए गए किसी भी कार्य के आदि, मध्य और अंत में मंगल करने का विधान किया है। फिर वही बात उन्होंने दोहराई है, वह मंगल निर्विघ्न कार्य सिद्धि के लिए जिनेन्द्र भगवान के गुणों का कीर्तन करना ही है। यानी कोई कार्य हमने जो अभी आरंभ किया है, हमने धौला का स्वाध्याय शुरू किया है तो शुरू में ही हमने मंगल किया, सभी आचार्यों को याद किया, उनको नमस्कार किया, और यहाँ धौला शुरू करने के पहले सुबह ही हमने वो श्रुत की पूजा भी की थी। तो क्यों? क्योंकि हमने जो स्वाध्याय प्रारंभ किया है वो निर्विघ्न रूप से पार हो जाए, पूरा हो जाए और हमें उसमें से कुछ लब्धि हो जाए। ये तो है ना विद्या, और विद्या का फल वही तो चाहिए, हमें अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य कोई चीजें हमें कोई काम आने वाली नहीं है। यही बात अपने साथ आगे भी आएगी और यहाँ भी इसी से कोई लाभ होने वाला है। तब यहाँ मंगल दो प्रकार का बताते हैं कि मंगल दो प्रकार का है, एक निबद्ध मंगल और एक अनिबद्ध मंगल। वो क्या है उसको बताएंगे। जो ग्रंथ के आदि में ग्रंथकार के द्वारा इष्ट देवता नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है अर्थात श्लोकादि रूप से रचा जाता है उसे निबद्ध मंगल कहते हैं। यानी जो ग्रंथकार ने जो उस श्लोक की रचना की है, भगवान का नमस्कार करने के लिए जो शुरू में जो श्लोक रचा है उसको निबद्ध मंगल कहेंगे। जैसे रत्न करण शावकाचार्य के शुरू में पहला श्लोक क्या है, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। वहां भगवान महावीर को नमस्कार किया है और वो कैसे है कि त्रिलोक यानी अलोका सहित तीन लोक को जानते हैं तो उनको उन्होंने नमस्कार किया। वैसे जो ग्रंथकार ने जिसकी रचना की है, अब टोडरमल जी ने वो मंगलाचरण हमने समय ज्ञान चंद्रिका में हम पढ़ते थे, वंदो ज्ञानानंद कर, तो वहां भी सिद्धों को, अरिहंतों को, आचार्यों को, सभी को नमस्कार किया है, जिनवाणी को वगैरह। तो ये इसको कहेंगे हम निबद्ध मंगल। और ग्रंथ के आदि में जो ग्रंथकार के द्वारा देवता को नमस्कार निबद्ध नहीं किया जाता है उसे अनिबद्ध मंगल कहते हैं। यानी नमस्कार आदि करेंगे परंतु वो उनकी अपनी रचना नहीं होगी तो उसको अनिबद्ध मंगल कहेंगे। नमस्कार तो करेंगे क्या, उसका विशेषार्थ बताते हैं। ग्रंथकार जो मंगल पाठ स्वयं रचकर ग्रंथ में निबद्ध करता है उसे निबद्ध मंगल कहते हैं। यानी ये ग्रंथकार की जो अपनी रचना है, वो श्लोक उसने अब रचा है, तो उसको निबद्ध निबद्ध करना है, रचना करना। जो अन्य रचित मंगल पाठ ग्रंथ में लिखा जाता है या मौखिक किया जाता है उसे अनिबद्ध मंगल कहते हैं। षटखंडागम में जो नमोकार मंत्र कहा था उन्होंने, भूतबलि और पुष्पधन ने, वो उनका निबद्ध मंगल है, और हम जो उसको आदि में बोलते हैं वो हमारे लिए अनिबद्ध मंगल है। ख्याल है ना? क्योंकि हाँ, अन्य किसी ने रचना की है और हम उसको बोलते हैं, जैसे प्रवचन। हाँ, हाँ, मगर उसमें भी वो, उनका प्रश्न ऐसा है तो नमोकार मंत्र अनादि का सिद्ध नहीं हुआ, तो उसमें अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, ये जो बातें हैं वो तो अनादि से ही है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पांचों परमेष्ठियों को जो नमस्कार है वो तो अनादि से ऐसे ही करते आएंगे। ख्याल है ना? हाँ।
देखो, बात ऐसी है कि अभी जो हम नमोकार मंत्र कहते हैं उसकी आदि यहाँ पर है, लेकिन मैं पूछता हूँ, ये होने के भूतबलि या पुष्पदंत होने के पहले आदिनाथ के काल में कोई अरहंतों को नमस्कार नहीं करता होगा? तो वो कहता होगा ना, गुजराती में बोलेगा हूँ नमस्कार करू छो, संस्कृत में बोलेगा नमो अरतेभ्या। तो भाव तो एक है, शब्द अलग होंगे, लेकिन ये जो मिल रहा है, ये ओरिजिनल जो अपने को मिल रहा है उसकी बात चल रही कि वो उसकी आदि है, लेकिन भाव की अपेक्षा अनादि है।
अनादि है उसको, नमोकार मंत्र भाव के अनादि का कहलाते। तो ये अनिबद्ध मंगल यानी जो अन्य ने रचना की, जैसे कुंदकुंदाचार्य ने प्रवचन सार रचा और उसके शुरू में जो लिखा उसमें हम कहते हैं सुर असुर नरपति वगैरह, तो ये उन्होंने जो रचना की है वो निबद्ध हो जाएगी, और हम उसी को दोहराते हैं तो ये अनिबद्ध हो जाएगी। देखो, जो अन्य रचित मंगल पाठ ग्रंथ में लिखा जाता है या मौखिक किया जाता है उसे अनिबद्ध मंगल कहते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार षटखंडागम के प्रारंभ में दिया गया नमोकार मंत्र निबद्ध मंगल है। हम जब कहेंगे तब, यदि हमने अपने पुस्तक पर लिख दिया तो यह हमारा अपना रचा हुआ नहीं है, तो यह हमारा अनिबद्ध है, या मौखिक हम कहते हैं तो यह हमारा अनिबद्ध मंगल है। यानी हमने उसकी रचना नहीं की है, हमने तो उसको बोला है। हाँ, मंगल तो उतना ही है सबके लिए। उनमें से यह जीवस्थान नाम का प्रथम खंडागम निबद्ध मंगल है। अब ये जीवस्थान यहाँ से शुरू हो जाएगी, जीवों के संबंध में जो कुछ यहाँ वर्णन चलेगा, तो ये जो जीवस्थान है वो निबद्ध मंगल है, क्योंकि इत्तो इमेसिम चौदसन्नम जीव समासानम इत्यादि जीव स्थान के इस सूत्र के पहले नमो अरिहंतानम इत्यादि रूप से देवता नमस्कार निबद्ध रूप से देखने में आता है। क्या है, यहाँ से वो जीव स्थान प्रारंभ होगा तो उसकी गाथा शुरुआत में इत्तो इमेसिम, यानी यहाँ पर अभी चौदसन्नम 14 जीव समास उसका वर्णन करेंगे, तो उसके पहले ये नमो अरिहंतानम वाली गाथा है, मंगल रूप से यहाँ लिखी गई है, तो ये निबद्ध मंगल उसको हम कहते हैं। देवता नमस्कार लिखा ना उसमें, पहले नमो अरिहंतानम इत्यादि रूप से देवता नमस्कार, अरिहंतों को, सिद्धों को और आचार्य उपाध्याय साधुओं को यहाँ नमस्कार किया है, तो ये निबद्ध रूप से देखने में आता है। अब शंका, सूत्र ग्रंथ स्वयं मंगल रूप है या अमंगल रूप? देखो, शंकाकार का क्या प्रश्न है, जो ग्रंथ लिखने जा रहे हो, जो सूत्र लिखते हैं, वो मंगल है या अमंगल है, ऐसा प्रश्न पूछने की क्या आवश्यक थी? जो वो स्वयं मंगल है तो दूसरा मंगल क्यों करते हो, ऐसा उनको पूछना है ना? क्या कहते हैं, सूत्र ग्रंथ स्वयं मंगल रूप है या अमंगल रूप? यदि सूत्र स्वयं मंगल रूप नहीं है तो वह सूत्र भी नहीं कहा जा सकता। यदि आप कहेंगे नहीं नहीं सूत्र तो मंगल नहीं है, वो पहले वाला नमोकार मंत्र ही मंगल है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सूत्र को तो अमंगल कह नहीं सकते, सूत्र तो मंगल ही होना चाहिए, क्योंकि मंगल के अभाव में पाप का कारण होने से उसमें सूत्रपने का विरोध आता है। यदि सूत्र मंगल न हो तो जो मंगल नहीं है वो क्या होगा? पाप होगा, तो वो पाप का कारण हो जाएगा। परंतु ये सूत्र के साथ, सूत्र के अर्थ के साथ उसका विरोध आता है। और यदि सूत्र अभी यानी वो पकड़ना चाहता है सामने वाले को, ऐसा प्रश्न पूछता है कि सामने वाले को पकड़ में लेना चाहते कि सूत्र मंगल है क्या अमंगल है? आप अमंगल तो कह नहीं सकते क्योंकि सूत्र तो स्वयं मंगल स्वरूप है, और आप यदि सूत्र स्वयं मंगल स्वरूप है ऐसा स्वीकार करते हैं तो फिर उसमें अलग से मंगल करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मंगल रूप एक सूत्र ग्रंथ से ही कार्य की निष्पत्ति हो जाती है, यानी ग्रंथ इटसेल्फ मंगल है और वो परिपूर्ण मंगल स्वरूप है, तो उस मंगल से तो कार्य की सिद्धि हो ही जाएगी। ग्रंथ की रचना इटसेल्फ मंगल है, तो ग्रंथ रचना का जो कार्य है वो अपने से ही मंगल रूप होने से सिद्ध हो जाने वाला है, तो अलग से यहाँ देवता नमस्कार वाला जो सूत्र लिखा है उसकी क्या आवश्यकता थी? प्रश्न ख्याल में आता है? और यदि कहा जाए कि सूत्र मंगल नहीं है तो यह बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा नहीं पाई जाती, यानी ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि सूत्र मंगल नहीं है ऐसा, अतएव परिशेष न्याय से वह मंगल है। परिशेष ने ऐसा लिखा नहीं है कहीं कि सूत्र मंगल नहीं है, तो क्या सिद्ध होता है? वो सूत्र मंगल है, ख्याल है? तब फिर इसमें अलग से मंगल क्यों किया गया? उसका समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सूत्र के आदि में मंगल किया गया है, तथापि पूर्वोक्त दोष नहीं आता, यानी सूत्र स्वयं मंगल है फिर भी उसके यानी ग्रंथ सूत्र से बना हुआ ग्रंथ स्वयं मंगल स्वरूप है, फिर भी उसके स्टार्टिंग में आदि में जो मंगल किया है यहाँ, तो उसमें कोई दोष नहीं आता है, कारण कि सूत्र और मंगल इन दोनों से पृथक पृथक रूप में पापों का विनाश होता हुआ देखा जाता है, यानी वो मंगल से भी पापों का नाश होगा और सूत्र जो अभी यहाँ लिखे जाएंगे उनसे भी पापों का नाश होगा। निबद्ध और अनिबद्ध मंगल पठन में आने वाले विघ्नों को दूर करता है। क्या कहते हैं? निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल, यह ग्रंथकार की अपनी रचना हो या पूर्वाचार्यों ने रचा हुआ वो स्वयं बोलते हो, या हम जैसे पूर्वाचार्यों ने लिखे हुए जो हम बोलते हैं, तो उसके क्या करते हैं? वे जो मंगल है ये मंगल क्या करते हैं? पठन में आने वाले विघ्नों को, पठन में ने अभी हम उसका अभ्यास करें ना, पठन यानी अभ्यास, तो इस हमारे अभ्यास में जो कुछ विघ्न आएंगे उसको वो दूर करते हैं। निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल है वे पठन में आने वाले विघ्नों को दूर करता है करते हैं, और सूत्र प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से पापों का नाश करके उसके बाद संपूर्ण कर्मों के क्षय का कारण होता है। वो निबद्ध मंगल अनिबद्ध मंगल तो विघ्नों को दूर करते हैं, और सूत्र क्या करते हैं? असंख्यात गुणी पापों की निर्जरा होती है, क्योंकि ये तो विशुद्धि बढ़ रही है ना, विशुद्धि बहुत बढ़ रही है, तो जो पाप कर्म है अशुभ कर्म है वो तो निकल जाते हैं। हमने देखा था उसका अनुभाग भी कितना असंख्यात होने वो कमती होते हैं, अनंत गुणा कम हो जाता है, और यहाँ तो मुख्यतः मुनियों की बात है, तो उनके भी ऐसे असंख्यात गुणा निर्जरा चल ही रही है, शुभ भाव पर आरोप करके बताया जाता है, ख्याल है ना? वहां वीतरागता है, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जीव है, तो उनके तो असंख्यात गुणा निर्जरा चल ही रही है, परंतु वहां ये तो ये सूत्र पर आरोप किए, सूत्र के कारण हो रहा है, तो क्या मिथ्यात्वी जीव इस सूत्र को पढ़ने से उसकी असंख्यात गुणा निर्जरा होगी? नहीं, उसके पापों का थोड़ा फर्क क्षय हो जाएगा, पुण्य बनेगा कुछ काल तक, ख्याल है ना? उसको भी पुण्य का बंध होगा, और पापों का भी यदि वो सूत्र पढ़कर तत्व पर विचार करता है, तत्व निर्णय करता है, सम्यक्ति की प्राप्ति कर देता है, तो उसके भी निर्जरा वहां है। तो सूत्र क्या है कि प्रति समय असंख्यात, ये अकेला इतना ही पढ़ के क्या, अरे चलो ये इसका अभ्यास करेंगे, खाली पढ़ेंगे, पढ़ना खाली, उसका अर्थ समझने की बात नहीं। जैसे वो भाद्रपद यानी दशलक्षण पर्व में 10 दिन में तत्वा सूत्र का पाठ करना है, रोज एक अध्याय फटफट 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 शुरू से आखिर तक बोल दिया, बस पूरा तत्वार सूत्र याद है, यानी मुखोद्गत है, कंठस्थ है, फिर भी उसमें एक शब्द का अर्थ मालूम नहीं। ऐसे हम बहुत सारे लोग देखते हैं, अच्छा है उनका पाठांतर अच्छा होता है, हम गाँव में तो देखते ना कितने वो ज्योतिप उनका भी पूरा याद है ना, बहुत बहुत लोगों को ऐसे पूरा याद होता है, परंतु उसमें कोई एक सूत्र इसका क्या अर्थ है कुछ पता नहीं। जब सूत्र बताते तो अरे हाँ ये तो हमारी याद है, पूरा याद है, ऐसा होता है। और उसके बाद संपूर्ण कर्मों के क्षय का कारण होता है, यहाँ उपचार से उसको क्षय का कारण कहा है, परंतु उसमें यथार्थ जो बात है वो अपने को समझनी चाहिए, इन बिटवीन लाइन पढ़ना चाहिए अपने को। अभी शंका, देवता नमस्कार भी अंतिम अवस्था में संपूर्ण कर्मों का क्षय करने वाला होता है। देखो क्या कहते हैं, देवता नमस्कार नमोकार मंत्र को अंतिम अवस्था में संपूर्ण कर्मों का क्षय करने वाले ने मोक्ष प्राप्त कराने वाला कहते हैं। इस मोक्ष प्राप्त करने की पहले की अवस्था, अभी इसमें से सच्चा क्या है समझना उसको देखेंगे हम। शंकाकार की शंका है ना, वो यानी क्या अरिहंत भगवान आचार्यों को उपाध्यायों को और साधुओं को नमस्कार करेंगे, अरिहंत भगवान नमोकार मंत्र कहते बैठेंगे। किसी ने पूछा था, किसी बच्चे ने, ये मंदिर में ध्यान करते हैं भगवान, क्या वो नमोकार मंत्र बोलते हैं क्या? ये नमस्कार करने, नमस्कार के जो भाव है या करने रूप जो क्रिया है, करने रूप जो वचन है, वो कौन से गुणस्थान तक होंगे बोलो? हाँ, अरे षटखंडागम स्वयं मुनि ने रचा है, दसवें गुणस्थान तक वो शुद्धोपयोग में है ना, वो बुद्धिपूर्वक में। मैंने क्या कहा, वो बोलने का जो चल रहा है कार्य छठे गुणस्थान में होगा। जिनेंद्र भगवान की वंदना स्तुति वगैरह जो कुछ है उसकी बात नहीं चल रही है, वो अबुद्धिपूर्वक राग में चला जाएगा, और वो अबुद्धिपूर्वक अरहंतों को होगा क्या?
नहीं, बात ऐसी है कि अरहंत तो क्या नमोकार मंत्र बोलते होंगे, ये जो प्रश्न है उसका उत्तर तो बहुत आसान है, वे तो संपूर्ण वितराग है, उनमें तो किसी को नमन करने के परिणाम ही नहीं, राग है ही नहीं, तो कैसे परिणाम ख्याल में है ना, वो तो स्व में ही पूरे एकाग्र है।
अब मेरा दूसरा प्रश्न, अरिहंतों को कुछ अबुद्धिपूर्वक होता होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होता? हाँ, राग द्वेष भी नहीं है, अबुद्धिपूर्वक यानी जो उनके समझ में नहीं आता ऐसा। पहले उनको राग ही नहीं है, पूर्ण वितराग है, दूसरे में अबुद्धिपूर्वक ऐसी कोई बात ही नहीं, अबुद्धिपूर्वक यानी जो उनके ज्ञान में न आवे, वो तो तीन काल के तीन लोक के सभी पदार्थ उनके अनंत अनंत पर्याय सब गुण द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ जानते, क्या है ना? तो यहाँ क्या कहते, देखो संपूर्ण ये प्रश्न पूछा शंकाकार का, क्या प्रश्न है? देवता नमस्कार भी अंतिम अवस्था में संपूर्ण कर्मों का क्षय करने वाला होता है, इसलिए मंगल और सूत्र ये दोनों ही एक कार्य को करने वाले हैं, यानी मंगल से भी वो देवता नमस्कार से भी वो कार्य होता है और सूत्र से भी होता है, फिर दोनों का कार्य भिन्न भिन्न क्यों बतलाया गया है? मंगल से तो इतना ही बताया कि ग्रंथ निर्विघ्न रूप से पार हो जाएगा, और सूत्र से बताया असंख्यात गुणा निर्जरा होती है और कर्मों का क्षय होता है, ऐसे दो कार्य भिन्न क्यों बताए? ऐसी शंका है, उसका समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि सूत्र कथित विषय के परिज्ञान के बिना केवल देवता नमस्कार में कर्म क्षय की सामर्थ्य नहीं है। क्या कहा? नमोकार मंत्र तो हम वो जन्म से हम छोटे हैं ना, एक साल का बच्चा भी वो रट लेता है, जो हम सिखाए वो गुनगुनाता है उसको, तो उसको भी वो याद है, भगवान के सामने जाके वो भी बोलता है, मंत्र और हम बड़े हुए तो वो जो हमने सीखा है ना बचपन से वो अभी भी बोलते हैं। फिर भी आगे क्या लिखा, सूत्र कथित विषय के परिज्ञान के बिना, यानी ना अरिहंतों का स्वरूप पता है ना सिद्धों का, आचार्यों का, उपाध्याय का और साधु का, और हम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम गुनगुनाते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, वो तो शब्द का रटन हुआ, उनके गुणों का अवभाषण नहीं हो रहा है हमें। और खाली अरिहंत सिद्धों का रटन करने से भी कुछ नहीं होगा, सूत्र में जो बातें बताई जाएगी, पूरा मोक्ष मार्ग पूरा जीवों का सभी ओर से बराबर अच्छा अच्छी तरह से जो वर्णन आएगा, अपने स्वरूप का वर्णन आएगा, यानी अपना स्वरूप जाने बिना मात्र देवता नमस्कार करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहते हैं, सूत्र कथित विषय के परिज्ञान के बिना केवल देवता नमस्कार में कर्म क्षय की सामर्थ्य नहीं है। परिज्ञान ने बस जान लिया, इतना पढ़ लिया धवला, वो नहीं चलेगा, उसको परिज्ञान नहीं कहते, उस रूप परिणमना वो परिज्ञान होगा, ख्याल आता है ना। उसमें तो विषय जो बताया शुद्धात्मा का विषय बताया, अब शुद्धात्मा का जब ज्ञान करेंगे तब हमने वो सूत्र को जाना ऐसा कहेंगे, तब हमें सूत्र का परिज्ञान हुआ ऐसा कहेंगे, क्योंकि सूत्र का तात्पर्य प्रयोजन तो वितरागता था, तो वितरागता प्रकट हुई तो हमने सूत्र को यथार्थ ज्ञान, क्योंकि उसके बिना ये कर्मक्षय होगा कैसे, अकेले शास्त्र ज्ञान शब्द ज्ञान नहीं करना है, उन शास्त्रों में जो विषय लिखा है उस जिस विषय की चर्चा की है, किसकी, शुद्धात्मा की, उस शुद्धात्मा को जानना ही वो शास्त्र को जानना है, अन्यथा वो कर्मक्षय होगा नहीं, यानी ना ही नमोकार मंत्र का रटन करने से होगा और ना ही शास्त्र के शब्द पढ़ लेने से होगा। हम कहते ना हमने इतना पढ़ डाला, ये छोटी छोटी पुस्तकें होती है तो ये पढ़ डाला, सिद्धांत प्रवेश का है तो 15 मिनट में पढ़ डाले, अरे उसमें क्या है कुछ नहीं समझ में आया, हाँ पढ़ के डाल दिया ऐसा ही वो। और हमें लगता भी ऐसे, हमने तो इतना पढ़ा है अभी हमारा कार्य क्यों नहीं होता, ख्याल है ना। ये हमारा वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाला है ना वो मधुसूदन जोशी, जिसने जैन तत्व परिचय का ट्रांसलेशन कर दिया, उसके बाद तो इसको इतनी अहोभाव, ऐसे वितराग शब्द के प्रति भी अहोभाव और सब ऐसे उसको कुछ कुछ समझ में आया कि जैन सिद्धांत क्या होते हैं, तो उसके पश्चात उसने बताया स्वयं ने, अरे ये तो शब्द ज्ञान हुआ, मुझे आत्मज्ञान कब होगा, जो अन्य मति जो हिंदू है उसको भी इतना एहसास होगा, ये तो शब्द का ये शाब्दिक ज्ञान तो हो गया, अब आत्मा का ज्ञान कब होगा मुझे, है ना। तो ये शब्द ज्ञान से यहाँ तात्पर्य नहीं है, उसमें जो विषय बताया है उसका ज्ञान। देखो कर्मक्षय की सामर्थ्य नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति शुक्ल ध्यान से होती है, परंतु देवता नमस्कार शुक्ल ध्यान नहीं है, ये शुक्ल ध्यान में देवता नमस्कार वो कोई बातें नहीं होगी, देवताओं को नमस्कार करने का भाव भी वो छठे वे में होगा, आगे के गुणस्थानों में नहीं होगा, ख्याल है। अब देवता नमस्कार सूत्र का अर्थ कहते हैं, ये नमो अरिहंतानम जो सूत्र है उसका अर्थ है, नमोकार मंत्र जो है उसका अर्थ अब प्रारंभ होने जा रहा है। अब तक तो पूरी इंट्रोडक्शन बताई उन्होंने, धवलाकार की इंट्रोडक्शन थी, अब जो षटखंडागम का जो पहला मंगल सूत्र जो है नमोकार मंत्र उसकी चर्चा अब प्रारंभ होगी। ये टीका ग्रंथ है ना, टीका ने क्या विस्तार से चर्चा, षटखंडागम जो मूल ग्रंथ है उसके एक एक सूत्र को एक एक गाथाओं को लेकर यहाँ उसकी चर्चा होगी, वो अब प्रारंभ कर रहे हैं। अब देवता नमस्कार सूत्र का अर्थ कहते हैं, ये नमोकार मंत्र को ही यहाँ देवता नमस्कार सूत्र कहा, नमो अरिहंतानम अरिहंतों को नमस्कार हो। अब ये अरिहंत ये शब्द कैसा हुआ उसकी बात करें, अरि अर्थात शत्रुओं के हननात अर्थात नाश करने से अरिहंत है, हनन करने ने नाश करना, अरि और हंत शत्रुओं का नाश करते हैं, तो वो अहिंसक है कि हिंसक है, तो अभी कौन से अरि है शत्रु कौन से उसकी बात करेंगे। देखो ये मोह को ही यहाँ अरि कहा है, नरक तिर्यंच कुमानुष और प्रेत इन पर्यायों में निवास करने से होने वाले समस्त दुखों की प्राप्ति का निमित्त कारण होने से मोह को अरि अर्थात शत्रु कहा है। देवों को वगैरह छोड़ा है, परंतु ऐसा नहीं समझना कि वहां कुछ सुख है। ये मुख्य रीति से जहां जहां दुख हमें लगता है कि नरक में दुख है, तिरेंचो में दुख है, कुमानुष पर्याय में दुख है। कुमानुष नाम सुना है? कभी नहीं सुना। हाँ, कुमानुष कहाँ रहते हैं? कुभोग भूमि में। उसको वो अंतरद्वीप जमलेंज कहते हैं। हमारा जम्बूद्वीप है, लवण समुद्र, फिर कौन सा द्वीप है? घाटकी खंड, फिर कालोदधि समुद्र, और फिर उसमें आधा पुष्कर, पुष्करार्ध जिसको कहते हैं। ये तो ढाई द्वीप हो गए। लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र में जिसको हम आइलैंड्स कहते हैं ना, ऐसे द्वीप है, उसको अंतर द्वीप कहते हैं। समुद्र के अंदर है, बहुत अंदर है, 500-500 योजन अंदर है। तो उसके वो सब कहाँ कितने होते हैं क्या, उसकी संख्या में नहीं चले जाएंगे हम। 48 और 48, 96 ऐसे होते हैं। तो इन द्वीपों में मनुष्य रहते हैं, और कौन सी दिशा के द्वीप में किस तरह से मनुष्य है, कोई पूंछ वाले है, कोई लंबे कान वाले है, तो कोई एक टांग वाले है, ऐसे अलग अलग, जिसको कुमानुष कहा है। वहां भी वो भोग भूमि होती है, परंतु ये मनुष्य ऐसे कुमनुष्य जिसको कहते हैं, कुभोग भूमि है वो। और ये कुभो, ये कहते ना वो खोटे पात्रों को दान करने के फलस्वरूप वहां पैदा होते हैं, ऐसा कुछ आता है शास्त्र। जब दान करते हैं तो भी पात्र को कर रहे कि अपात्र को कि कुपात्र को, वो देखना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। और क्या समझकर दान दे रहे हैं? जैसे कोई भिखारी को भी दान देगा, वो तो दया समझकर, वो तो दया है, करुणा दान है। परंतु जब हम मोक्ष मार्ग में हम जिसको आहार दान करना या अन्य जो कुछ दान करते हैं, तो उसमें वो सामने वाला व्यक्ति पात्र है या नहीं। नहीं तो मैं दवाखाना में बैठती थी, तो वो हम सत्यनारायण की पूजा करने वाले, वो तो पी के आते थे, पूजा के लिए पैसा दो, ये हमारे यहाँ ऐसा कोई उत्सव है उसके लिए पैसा दो। हमने कहा हमने आज तक किसी को दिया नहीं, ना देंगे। तो ये तो कुदान या जो अपने में भी होता है ना, अभी कोई मुनि है नहीं, मुनि का भेष धारण किया, भेष ने अन्य भेष छोड़ दिया, तो उनको लगता है मैंने मुनि का भेष धारण किया, क्या ना। महाराष्ट्र में तो चलता है, सब जगह चल रहा है, दिगंबर अवस्था धारण कर ली, उनको लगता है मैंने मुनि भेष धारण कर दिया, और बिल्कुल कुछ ठिकाना नहीं है शास्त्र के। तो ये तो अतिचार तो छोड़ ही दीजिए, अनाचार चल रहा है, फिर भी ऐसे लोगों को मुनि है मानकर उनके आदर करना, उनको यथोचित कुछ दान देना, ये सब क्या है? कुपात्र दान है। और ऐसे फल में ये कुमानुष पर्याय में जीव जन्म लेता है, इसकी बात यहाँ आगे। कुमानुष प्रेत अन्य व्यंतर आदि जो अन्य जो चीजें हैं,
यहाँ पर आप ये भी बात ले सकते हैं कि जो मुनि है नहीं, उनको मुनि समझकर आहार दान आदि जो उनकी क्रिया है यानी वो करना, ये कुपात्र दान हो गया। तीन बातें हैं, पात्र दान, अपात्र दान और कुपात्र दान, ख्याल में। तो ये कुपात्र दान का फल कुभोग भूमि है,
क्योंकि क्या है, छोटे छोटे गांव में हमें प्रश्न भी पूछते हैं, अरे हम भिखारी तक तो देते इतना सारा, तो इनको देने को क्या हर्ज है? अरे भिखारी को आप भिखारी समझ कर दे रहे हैं, और मुनियों को यथा विधि यानी वो नवधा प्रकार से भक्तिपूर्वक आप देते, तो उसमें वहां वो सच्चे मुनिपना की मान्यता उसके पीछे पड़ी है। अभी उसकी चर्चा में नहीं जाएंगे, ये कुमानुष क्या है उसकी बात चल रही है। मुनियों को कहा आपने? मुनि हो गए सच्चे तो वो बहुत अच्छा दान है, पात्र दान है वो, तो उनके उत्तम पात्र दान है, उत्तम पात्र दान कहेंगे। ये अभी क्या बोले, किसी व्यक्ति की यहाँ चर्चा नहीं होगी या किसी विशिष्ट संप्रदाय की चर्चा नहीं होगी, ख्याल है ना। यहाँ अभी ये सब अरिहंत कौन, सिद्ध कौन, आचार्य कौन, साधु कौन, इसके डेफिनेशन है बराबर। हम ग्रंथ के अनुसार देखेंगे कौन है, बाकी जो अपना अपना विवेक से काम करना, हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे। अभी मोह की बात चली, अरि किसको कहना है? मोह को अरि कहना। तो उसके कारण क्या होता है कि नरक, तिर्यंच, कुमानुष और प्रेत इन पर्यायों में निवास करने से होने वाले समस्त दुखों की प्राप्ति का निमित्त कारण होने से मोह को अरि अर्थात शत्रु कहा है। यानी इस मोह को नाश करने वाले वे अरिहंत शंका।
यहाँ ये बता रहे कि मोह करने से हमें कौन कौन सी पर्याय प्राप्त होगी, तो मोह किसका कारण है? तो कहते हैं उसके कारण हमें नरक गति मिलेगी, तिरंच गति मिलेगी और कुमानुष मिलेगा, और प्रेत का अर्थ व्यंतर, ये भूत प्रेत कहते हैं ना।
यानी हीन पर्यायों में जीव जन्म लेता है और वहाँ के दुख भोगता है। हाँ वो देव संबंधी भी आ गए, चारों गति के जीव ले लेना उसमें। यह प्रश्न फिर शंकाकार ने शंका पूछी, केवल मोह को ही अरि मान लेने पर शेष कर्मों का व्यापार निष्फल हो जाता है? अकेले मोहनीय कर्म को आपने शत्रु कहा तो अन्य कर्मों को तो शत्रु में नहीं लिया, तो वो तो अन्य कर्मों का जो व्यापार है, अन्य कर्मों का जो फल है, वो तो कुछ है ही नहीं ऐसा मानना पड़ेगा, निष्फल हो जाए ना, अन्य कर्मों का कुछ वहाँ कार्य ही नहीं ऐसा मानना पड़ेगा। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी के समस्त कर्म मोह के ही अधीन है। हमने पहले वो कर्णान योग में बहुत विस्तार से देखा था कि उदय तो आठों ही कर्मों का निरंतर होता है, बराबर। तो आठों कर्मों में कौन कौन से कर्मों के उदय में नए, यानी कौन कौन से कर्मों का उदय नया कर्म बंधने में निमित्त है, तो हम जरा चर्चा करेंगे उसकी। पहले घाती अघाती की बात करेंगे हम, तो अघाती कर्मों में कौन सा है? वेदनीय है। तो वेदनीय कर्म के निमित्त से जो कुछ संयोगों में सुख बुद्धि दुख बुद्धि हो रही है, या कोई जो संयोग प्राप्त हो रहे पर पदार्थ है, क्या वे बंध का कारण है? अश्विन भाई, पर पदार्थ बंध का कारण होगा का? ये मुझको बंध का कारण है कि अबंध का कारण है? हाँ, कुछ नहीं है, पर पदार्थ अपने में कुछ नहीं करते, तो वे बंध का कारण नहीं हो सकते। आयु कौन सी मिली, इससे कोई बंध का कारण नहीं बन सकता। गोत्र उच्च है या नीच है, वो भी बंध का कारण नहीं है। तो नाम कर्म के कारण जो कुछ शरीर की रचना हुई, काला गोरा ऊंचा ठींगना जो कुछ, उससे तो बंध होता होगा, उससे भी नहीं होता। बहुत से 93 भेद है, तो उसमें बंध होता होगा, कुछ नहीं होता। अभी सबको हम हटाया हमने, अब घाती कर्म में आ गए। तो अभी अभी हमने बात की थी ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षोभशम होता है, और उसमें कुछ ज्ञान का अंश प्रकट है, तो ज्ञान के प्रकट अंश से बंध होगा कि नहीं होगा? आप निर्णय नहीं कर पा रहे हा? सोच रहे? हाँ सोचो। हाँ अभी उसको भी बात करेंगे, अज्ञान से बंध, आपका कहना है अज्ञान से बंध होगा। तो अभी हम कहते हैं ये हमारा इतना ज्ञान प्रकट है, और जो प्रकट नहीं है उसको हम अज्ञान कहते हैं, बराबर। तो जो प्रकट है उससे बंध होगा क्या नहीं होगा? क्योंकि स्वभाव का अंश है, स्वभाव के अंश से अगर बंध होगा तो तीन काल में हम अबंध हो ही नहीं सकते, बराबर। अब अज्ञान यानी जो है ही नहीं है, जो है ही नहीं वो क्या बंध करेगा? यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण को भी हटाया, अब अंतराय कर्म वो तो बाधा डालने वाला है, तो उसमें भी कोई बंध का कारण नहीं बनता है। तो बच गया एक ही मोहनीय कर्म। तो मोहनीय का जो कर्म का उदय है, उदय तो सभी का है आठों कर्मों का, पर उसमें एकमात्र मोहनीय कर्म के उदय में अज्ञान यानी स्वरूप संबंधी नहीं, ये मोह के कारण ही उसके भ्रम प्रयता है अपने बारे में, स्वरूप के बारे में भ्रम है। वो अज्ञान कौन सा वाला, वो मिथ्या ज्ञान को वहां अज्ञान कहा। अज्ञान दो होते हैं, मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान कहते हैं और ज्ञानावरणीय संबंधी जो अज्ञान है ना, देखो इसको हम ज्ञान है ना, ये प्रकट ज्ञान को क्या कहेंगे, अभी छद्मस्थ अवस्था में प्रकट ज्ञान को हम क्या कहेंगे, क्षौपशमिक ज्ञान, और जो अप्रकट ज्ञान है यानी जो ज्ञान नहीं है, अज्ञान जो है उसको क्या कहेंगे, औदयिक अज्ञान। अभी हमारा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वो हमारा क्या है, क्षौपशमिक ज्ञान है। अभी हमें अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं है, वो क्या है हमारा, औदयिक अज्ञान है। उनका उदय चल रहा है ना, अवधि ज्ञानावरण का उदय है, मनपरे ज्ञानावरण का उदय है, केवल ज्ञानावरण का उदय है। ये और जो 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 प्रकट है ना, वो भी उसके साथ प्लस मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व रूप भ्रमणा है, तो उसको अज्ञान कहते, उसको भी कहेंगे अज्ञान। हाँ, वो उस ज्ञान ने क्या किया, मिथ्यात्व के साथ अपने को राग के साथ एकमेक मान लिया, इसलिए उसको भी बंध का कारण में गिनेंगे, परंतु वो ज्ञान इटसेल्फ बंध का कारण नहीं है। अभी बात है ना, केवल ज्ञान का अंश है, मिथ्या दृष्टि का भी जो ज्ञान है, अभी अभी हमने चर्चा की थी, वो ज्ञान कंफ्यूज्ड है बहुत। वो ज्ञान अपने को ये अंश भले आंशिक है, परंतु अपना अपना ही सच्चा स्वरूप नहीं जान रहे वो। हाँ देखो कि यहाँ क्या कहते हैं, कि केवल मोह को ही हरि मान लेने पर शेष कर्मों का व्यापार निष्फल हो जाता है, तो उसका उत्तर है ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी के समस्त कर्म मोह के ही अधीन है। मोह के बिना शेष कर्म अपने अपने कार्य की उत्पत्ति में व्यापार करते हुए नहीं पाए जाते हैं। मोह निकल गया तो बाकी भी बस ढीले हो गए, वो भी निकल जाते, जिससे कि वे भी अपने कार्य में स्वतंत्र समझे जाए। इसलिए सच्चा हरि मोह ही है और शेष कर्म उसके अधीन है। तो हरि को सच्चे वो सेनापति को ही बस उसका ही पराजय कर दिया, तो बाकी तो सेना तो भागने ही वाले है। फिर प्रश्न पूछते हैं कि मोह के नष्ट हो जाने पर भी कितने ही काल तक शेष कर्मों की सत्ता रहती है, इसलिए उनका मोह के अधीन होना नहीं बनता, क्योंकि अरिहंतों के भी चार अघातिया कर्म है, तो वे तो पूर्ण वितराग हुए हैं, मोह के साथ अन्य भी तीन चले गए हैं, फिर भी अघाती कर्म है, कुछ काल तक यहाँ वो रहेंगे, तो सभी कर्म मोह के अधीन नहीं हो सकते, ऐसा प्रश्न है। उसका उत्तर, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मोह रूप अरि के नष्ट हो जाने पर जन्म मरण की परंपरा रूप संसार के उत्पादन की सामर्थ्य शेष कर्मों में नहीं रहती। क्या लेना, ऐसे कर्म नहीं है कि फिर दोबारा जन्म मरण में वो उस फेरे में अटकना पड़े। उन कर्मों का सत्व असत्व के समान हो जाता है, वो नहीं है के बराबर है तो सही, परंतु अभी वो फिर से दोबारा जन्म धारण करना पड़े, ऐसी सामर्थ्य उन कर्मों में नहीं है। तथा केवल ज्ञान आदि संपूर्ण आत्मगुणों के आविर्भाव के रोकने में समर्थ कारण होने से भी मोह प्रधान शत्रु है। क्या कहते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख आदि जो आत्मा के गुण है, उसका आविर्भाव होना यानी प्रकट होना, उसके प्रकट होने में मोह क्या करता है, रोकता है उसको। जीव के जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को वो रोकता है, इसलिए उसको प्रधान शत्रु कहा है। मोह प्रधान शत्रु है और उस शत्रु के नाश करने से अरिहंत यह संज्ञा प्राप्त होती है। यह अरिहंत की बात, अरि शब्द का अर्थ हुआ, अथवा रज अर्थात आवरण कर्मों के नाश करने से अरिहंत है। आवरण कर्म कौन कौन से है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, उसको रज कहा है, धूली कहा है। जैसे दर्पण पर धूली आएगी तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता है स्पष्ट, तो ये आवरण करने वाले दो कर्म, उनका नाश करने से भी अरिहंत कहते उनको। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म धूली की तरह बाह्य और अंतरंग स्वरूप समस्त त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय स्वरूप वस्तुओं को विषय करने वाले बोध और अनुभव के प्रतिबंधक होने से रज कहलाते हैं। अब इसकी चर्चा हम कल विशेष करेंगे। वो शब्द ये आता है ना स्तुति में, अरि रज रहस्य विहीन, अरिहंत भगवान की स्तुति में आता है। अरि भी नहीं है, रज भी नहीं है और रहस्य भी नहीं है, यानी मोहनीय भी नहीं है, ज्ञानावरण दर्शनावरण भी नहीं है और अंतराय कर्म भी नहीं है। उसकी चर्चा हम इसको दोबारा ले लेंगे समाधान से। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो लो। अश्विन में